कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बराबर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो श्री गिरिराज गोवर्धन भक्ति को देने वाले हैं। गिरिराज गोवर्धन की महिमा है कि सबसे भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त हैं गोपियां हैं वो भी उनको हरिदास वर्य के नाम से पुकारते हैं। हरिदास वर्य का मतलब क्या है? हरिदास वर्य मतलब क्या है? बेस्ट ऑफ हरिदास मतलब भगवान के भक्तों में से दासों में सबसे श्रेष्ठ। अभी जो सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्ति भक्त हैं राधा रानी और गोपियां वो इनको पुकार रही है कि आप सबसे बेस्ट हो। कोई ऐरा गैरा नहीं बोल रहे कि आप बेस्ट हो। जब भी कौन पुकार रहा है उनको बेस्ट के रूप में वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवान के जो श्रेष्ठतम भक्त हैं गोपियां जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु जपते थे, चैतन्य महाप्रभु गोपियों का नाम जपते थे जब भी वो गृहस्थ थे भाव में आकर आते थे। तो उनके जो विद्यार्थी थे ना उनके विद्यालय में वो टिका करते थे उनके ऊपर। हाँ तो वो स्त्रियों का नाम क्यों पुकारते हैं? कृष्ण का नाम देना चाहिए। वो डंडा लेकर भागे थे उनके पीछे, भाव में थे ना वो समय। उनके भाव समाधि को उन्होंने कुछ रोका तो उन्होंने डंडा लेके भागे उनके पीछे। तो उसके बाद में उनके जब वो शांत हो गए तो उनको मन में विचार आया कि जब तक मैं गृहस्थ हूँ और जब ये भक्ति भाव का प्रचार करूंगा तो ज्यादा कोई लोग उसको कीमत नहीं देंगे, तो संन्यास लेना पड़ेगा। संन्यास के बाद में लोग दंडवत करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, फिर जो कुछ कहेंगे उसको फॉलो करेंगे। तब से उनके मन में वो संन्यास का बीज आरंभ हुआ, आगे उन्होंने संन्यास लिया। चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद भी गोपियों का नाम का जप करते थे। तो आप सोच सकते हैं जो स्वयं राधा रानी है मतलब कृष्ण राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं, भक्ति का चरम प्रचार कर रहे हैं, भक्ति और विनती करते हैं लोग, वो खुद अगर भक्ति सिखा रहे हैं तो कितना श्रेष्ठ है। तो वो चैतन्य महाप्रभु इन गोपियों का नाम लेते थे क्योंकि तो इनका नाम लेना ही हृदय के लिए शुद्धि कारक है। वो जो भगवान की परम भक्त हैं वो इनको हरिदास के नाम से पुकारते हैं। क्योंकि गोवर्धन की महिमा ऐसी है कि जितने भी रस हैं भक्ति के, वो सब रसों के जितने भक्त हैं, वो सब लोग, सब लीलाएं भगवान ने गोवर्धन के आसपास की। गोवर्धन इसका विटनेस है। बाल लीला, गौचारण, श्रृंगार लीला, दास्य लीला, माधुर्य लीला, वत्सल लीला, सभी प्रकार के रसों का प्रकटीकरण गोवर्धन के इर्द गिर्द हुआ है। गोवर्धन, यमुना, ये दोनों ब्रजभूमि, ये तीनों जो है ना, ये सभी रसों के साक्षी हैं। लेकिन एक एक वर्ग होता है, वो एक एक रस का अनुभव करता है। एक वर्ग के व्यक्ति सभी रसों का अनुभव नहीं करते। लेकिन गोवर्धन के तले एक साथ सात दिन सात रात सभी रसों का आदान प्रदान हुआ है। दैट इज अ स्पेशलिटी, गोवर्धन की स्पेशलिटी है। इंद्र ने अपराध जरूर किया, लेकिन इंद्र ने अपराध किया और सारे ब्रजवासियों को एकत्र किया। उन्होंने क्या हो गए एकत्र, क्योंकि भगवान बड़े प्रसन्न थे, इस बहाने सब लोग एक साथ हो गए। इन्हें दिन में ग्वाल बालों को मिलना है, शाम को गोपियों को मिलना है, घर में मैया बाबा को मिलना है, लेकिन सभी भक्त एक साथ में गोवर्धन लीला के अंतर्गत आए। तो जब गोवर्धन को उठा रहे थे, तो अभी वर्षा हुई, उसको सब लोग चले उनके पीछे। फिर उन्हें ऐठा कदम दबाया, मुड़ा, फिर गुफा में गए। उसका नाम क्या था? प्रविष्ट गुफा। प्रवेश किया ना उन्होंने, तो वन का नाम भी प्रविष्ट वन है, इसमें वो गुफा में प्रवेश किया। आज उसको पेठा कहते हैं, पेठा, पेठा गांव, लेकिन है प्रविष्ट वन। तो उसके अंदर प्रविष्ट गुफा में प्रवेश किया, उसके बाद जमीन के अंदर से गिरिराज को उठाया, तो काफी समय गया ना बीच में। फिर जब धारण किया तो सब लोग आई आई सब लोग अंदर आ गए उसके, और गोवर्धन भी विस्तार हो गया सबको सम्मिलित करने के लिए। तो उसके बाद में जब सब लोग स्थिर हो गए, तो माता यशोदा कह रही है, अच्छा हुआ ना कि मैंने इतना कीमती मूल्यवान मक्खन खिलाया उसे, तो वो आज काम आ रहा है ना, देखो है ना। आप लोगों को पता होगा शायद कि कितना स्पेशल मक्खन उसको खिलाती थी। उनके पास ना ऐसा एक खेती थी, उसके अंदर ऐसी घास थी जिस घास को कमल से खुशबू आती थी, स्पेशल। और वो गिने चुने 100 गायों को खिलाती थी, और वो गाय के दूध को कमल की खुशबू आती थी। उसके गाय का नाम था पद्मगंधा गाय। ऐसे 100 पद्मगंधा गाय थी उनके पास। इट्स नॉट जस्ट इजी इतना सुंदर गायों को इस प्रकार से परवरिश देना, स्पेशल गायों को। और उस गाय का जो दही जमाती थी, उनको भी कमल की खुशबू आती थी। और उसका मंथन करने के बाद में वो और ज्यादा तीव्र, क्योंकि अभी और हो गया ना, संपृक्त हो गया ना, सैचुरेटेड हो गया ना, कॉन्सेंट्रेट हो गया ना वो, तो मक्खन जो आता था उसको भी कमल की बहुत सुगंध आती थी। और वैसा मक्खन कृष्ण को खिला दिया, बहुत मेहनत करती थी। तो आज वो सोच रही है कि भाई काम आ गया मेहनत, है ना, ऐसा मक्खन खिलाया तो कृष्ण ने आज उसका परिणाम दिखाया। तो वो जब मैया बोल रही है, मैया भी कह रही है, अरे इन्हें तो खा लो, सुबह से पकड़ के रखा है गोवर्धन, दूध भी नहीं पिया, माखन भी नहीं खाया, थोड़ा खा लो, थोड़ा ये हाथ से ये हाथ में कर लो, तो यहाँ आपको मालिश कर दू मैं। तो मैया का भाव है ना, वो जो बालक देख रहे बेचारा, इतना सा बालक है, इतना बड़ा पर्वत उठा के रखा है, तो हाथ भी दुखता होगा ना उसका। तो वो सोच रही है ऐसे कि मैं इसको मालिश कर दू, उसको रखो कुछ देर के लिए, फिर मैं इसको मालिश करूंगी, फिर इसको मालिश करूंगी, फिर थोड़ा माखन खा ले, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैया का विचार ऐसे होता है हमेशा, वो हमेशा बालक का कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं, दिन रात चिंतन में रहते कि कभी कितना, कभी क्या दिया, अभी बाद में क्या दिया, अभी कभी कपड़ा बदले करना, अभी क्या करना है, अभी क्या करना, उसके बाद क्या करना है, फिर घुमाना है, फिर खिलाना है, फिर ये करना है, फिर चेंज करना है, चिंतन दिन भर चलते रहता है, प्रेम का चिंतन। तो वैसे ही वो चिंतन कर रहे हैं, तो बाल बाल वहां खड़े हैं, वो सुन रहे हैं कि मैया क्या बोल रही है, और वो हंस रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, अरे मैया को पता नहीं है, लेकिन इसका सही कारण क्या है हमको मालूम है, ऐसा ग्वाल बाल बोल रहे हैं। ये गोवर्धन क्यों उठा पाया, इसका मैया को वहम है कि वो मक्खन खा के उठाया उसने। असली कारण तो ये है कि हमने उसको रोज कुश्ती में हराया, मतलब ट्रेनिंग दिया ना उसको, हराया जरूर, लेकिन हारते हारते वो इतना सीखा, इतना बल प्राप्त हुआ उसको, तो हमारे कुश्ती का ये प्रभाव है कि हमने कुश्ती खिला खिला कर उसको हरा हरा कर उसको मजबूत बना दिया है। देखो आज काम आएगा ना, देखो काम आया ना, देखो उठा रहा है, ये उनकी चर्चा चल रही है और गोपियां उनको सुन रही है और हंस रही है। तो ये दोनों लोग जानते नहीं है, दोनों अज्ञानी अपने रहम में घूम रहे हैं। वो क्या बोल रही है कि वास्तविक दृष्टि से ये गोवर्धन क्यों उठा पाए, क्योंकि राधा रानी तिरछी चितवन से उनको देख रही है और वो भी उनको देख रहे हैं देखते हुए। तो नजरों का जब मिलन हो रहा है तब जाकर, तो नजरों का जो मिलन हो रहा है उसमें राधा रानी की नजरों से उनको शक्ति प्राप्त हो रही है, दिव्य शक्ति, और उसके वजह से वो गोवर्धन को उठा रहे हैं। तो ग्वाल बाल ने सुना वो, तो गोपियां से क्यों बोल रही है, तो गोपियों के पास गए, बोले इसका प्रूफ क्या है बताओ, थोड़े देखो कृष्ण किसको देख रहे हैं, तो देखो राधा किसको देख रही है, तो देखते बरोबर नजरें मिली हुई है उनकी, है ना। तो बलराम भी देखते हैं कृष्ण कहाँ देख रहे हैं, राधा रानी कहाँ देख रही है, जब कृष्ण को कृष्ण बलराम जी को देखते हुए देखते हैं तो नजर झुका लेते हैं एक मर्यादा के हिसाब से। इसलिए श्रीनाथ जी का दर्शन जो है ना, वो नजरें उनकी ऐसी है, उनकी आंखें भी ऐसे लगाते हैं, और श्रीनाथ जी को दर्शन करना है ना तो नीचे जाकर ऐसे देखना होगा आपको, ऐसा महात्म्य उसका श्रीनाथ जी का, तो नजरें उनकी नीचे हैं झुकी हुई है सम्मान के साथ संकोच से अपने बड़े भैया के लिए। तो फिर क्या हुआ, तो ग्वाल बालों को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, बोले आपको दिखाएंगे बाद में। तो फिर 7 दिन 7 रात हुए, गोवर्धन की लीला समाप्त हो गई और भगवान ने बारिश रुक गई तो पर्वत को नीचे रखा, सब लोगों को कहा जाओ, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जाओ, उन्होंने कहा जाओ जाओ अभी दृश्य नहीं हो रही जाके देखो, तो एक गए फिर उनकी हिम्मत हुई उसके बीच सब लोग चले गए। सब जाने के पश्चात में भगवान ने पर्वत को रखा, बीच में बहुत कुछ हुआ है, बीच में और भी कुछ हुआ कि सबको लगा अभी ये तो गोपियां हो गई, ग्वाल बाल हो गए, मैया हो गई, तो बाबा लोग क्या बोल रहे हैं, अरे इतना सा नेक तो लाला कब तक उठावे को, तो इसलिए उन्होंने डंडे लगाए अपने हम सपोर्ट देंगे, जरा छोटा सा हम तो डंडे लगाएंगे तो खड़ा रहेगा पर्वत। अच्छा बीच में क्या हुआ, ऐसे उठाया था ना तो सबको देख रहे हो, सब उनको देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बहुत सबको भूख प्यास सब मिट गई। भगवान के 64 उनके जो गुण है ना, उनके अंदर एक 4 गुण जो किसी के पास नहीं है, सबके पास है लेकिन उतनी मात्रा में उतनी कला किसी के पास नहीं है। तो कौन से है वो, वेणु माधुरी, मुरली बजाने की कला जो है ना, वो सब बजाते हैं, ग्वाल बाल बरला भी बजाते हैं, लेकिन कृष्ण की मुरली जो है ना वो अद्भुत है। तो वेणु माधुरी, फिर लीला माधुरी, जिस प्रकार की लीला वो करते हैं ना, चटपटी लीला, वो कोई भी अवतार नहीं कर सकता है, केवल वो कृष्ण अवतार में होता है, ऐसा अद्भुत लीला, जो अजगर के मुंह में गए उसके बाहर निकले, वहां से खाले आप डांस किया, कोई सुना है क्या आपने, राम भगवान नरसिंह भगवान ऐसे सुना है कभी, ऐसा कुछ किया है उन्होंने, चोरी चोरी करके मक्खन खाते हैं, ऐसी चटपटी लीला केवल कृष्ण कर सकते हैं। तो लीला माधुर्य और एक प्रेम माधुर्य, जो अपना भक्तों पर प्रेम करते हैं ना, ऐसा प्रेम कोई भी अवतार नहीं कर सकता। और आखिरी माधुर्य रूप माधुर्य, उनका जो रूप है ना इतना अद्भुत है कि उनका एक नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, अदृष्टा, अदृष्टा मतलब जिसको आज तक किसने देखा नहीं है, ऐसा उसका अर्थ है, वो भी एक कृष्ण का नाम है, कभी करुणापुर बताते हैं कृष्ण करुणामृत में, एक नाम है उनका अदृष्टा, यानी आज तक किसी ने उनको देखा नहीं है, इसका मतलब उन्होंने समझाया है कि आज जो दिख रहा है वो दर्शन आज पहले हो रहा है, कल जो था वो कल के लिए अद्भुत पहले बार हुआ था, आज जो हो रहा है वो कल किसी ने देखा नहीं है, आज नया दर्शन है, और शाम को देखे तो भी किसी ने देखा नहीं होगा आज तक, वो आज नया दर्शन है। इसलिए जिनका दर्शन किसी ने किया नहीं है वो कृष्ण अदृष्टा, ऐसा एक नाम है उनका। तो रूप माधुरी उनकी इतनी इतनी लावण्य उनका है कि वो एक तो सेम नहीं रहता है, हमेशा नया रहता है और कभी रिपीट नहीं होता है, जैसे राधाराम जी ना वृंदावन के, तो कोई भी श्रृंगार बदलते नहीं है, मतलब वापस नहीं पहनते, हर रोज नया श्रृंगार फिर भेंट में दे देते किसी को, और हर रोज 10-15 ड्रेस तैयार रहते हैं उनके, उसमें से एक पहनते हैं दोबारा कभी नहीं पहनते हैं। आपने कभी फोटो लिया होगा, दैट्स इट, उसमें वापस फोटो निकलेगा नहीं, वो नया ड्रेस पहनेगा अगली बार, दूसरे दिखेंगे वो। तो इतना रूप लावण्य था उनका, और वो भी कैसे हर क्षण नया। आज इस क्षण में जो दिखाई पड़ रहा है वो पिछले क्षण में दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो चेंज है। ऐसा दर्शन जब भी हर क्षण नवा नवा दर्शन प्राप्त हो रहा है, तो सब लोग अपने सुध बुध खो बैठे, प्यास भूख खो बैठे, नींद खो बैठे, किसी को किसी का होश ही नहीं रहा, सब शरीर का भान ही भूल गए सब लोग। तो प्रश्न पूछते हैं ना कि वो 7 दिन 7 रात कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी विष्णु उधर, तो किचन नहीं खोला उसके अंदर उन्होंने, तो उसको खोल के चालू किया, भाई सबको खिलाना है, इतने लोग बैठे हैं, किसी ने भोजन नहीं किया, किसी ने जलपान नहीं किया, किसी ने पेयपान नहीं किया, भोजन नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो प्रश्न उठता है कि कैसे रहे फिर 7 दिन 7 रात। तो कृष्ण के रूप माधुरी को पीकर उन्होंने अपना 7 दिन का जीवन चलाया। इतना सुंदर दर्शन, एक पहले से ही रूप लावण ने संपन्न उसमें गिरिराज को धारण किए हुए, उसने क्या किया, उन्होंने बीच में उनका मूड आया कि चलो मुरली बजा ले, तो मुरली निकाला, सब बोले बड़े वाल वाल, अरे मत बजा मत बजा मत बजा, क्यों ऐसे बोला, तो आनंद आता ना, आनंद आएगा ना, कि भाई वैसे भी फ्री टाइम है अभी, है ना, सब एक जो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी मीटिंग है, और घनघोर वर्षा हो गई, सब बाढ़ आ गई, तो छुट्टी, अभी क्या फ्री टाइम है पूरा, कुछ मीटिंग नहीं कुछ नहीं, तो वैसे कुछ खेती नहीं कुछ नहीं करना है, तो पूरा फ्री टाइम है, तो बजा ले मुरली अच्छा है, थोड़ा कर्मणुक हो जाएगी। लेकिन उन्होंने मना किया, क्यों मना किया, उनको पता था कि जब ये मुरली बजाते हैं तो पत्थर पिघल जाते हैं, अरे हाथ पर अगर वो पिघल गया तो ऊपर से वर्षा हो रही है सब बह जाएंगे, और ऊपर से दूसरा एक भय था, एक तो पत्थर पिघलने का भय था कहीं छतरी ही निकल जाएगा, और दूसरा भय था कि ये जब मुरली बजाएगा तो खुद कांपेगा ऐसा भाव में, तो वो भी थरथर थरथर कांपेगा तो वो गिरेगा तो सर पर। फिर भी उन्होंने रुका नहीं अपने आप को, निकाला बजाना शुरू कर दिया। तब इनको ख्याल आया कि हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, समझो वो थरथर कांपने लगा और गिरने लगा तो हम लोग सपोर्ट करेंगे ना, बचेगा सब लोग बच जाएंगे। ऐसा है, तो बहुत देर तक उन्होंने सपोर्ट दिया, तो उनको लगा कि देखो हम हमारी वजह से पर्वत उठा हुआ है, लाला तो बीच में ऐसा सपोर्ट थोड़ा था, मेन सपोर्ट तो हमारा है। तो कृष्ण ने क्या किया, पर्वत को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, थोड़े वैसे वैसे गिरने लगा, नहीं 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 हमारा धंधा से नहीं, वो ही पकड़ रहा है। वो जो उन्होंने टेढ़ा किया ना, उसके पीछे भी एक रहस्य है, वो ये है, समय भी कमी है बेचारे, उसके पीछे रहस्य क्या है कि भवानी देवी और शंकर भगवान ने एक 90 दिन का व्रत किया था राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। हाँ, विष्णु भगवान ने कृष्ण का मंत्र दिया, फिर कृष्ण भगवान ने राधा रानी का मंत्र दिया, फिर 90 दिन का व्रत बताया, और वो ब्रह्म वैवर्त में उसका वर्णन है। 90 दिन का व्रत पूरा किया तो उसका भंडारा होगा ना महापुरुष, तो सभी देवताओं को ऋषियों को सबको भोजन के लिए बुलाया, भोजन का समय सोने का नहीं है, अभी भोजन परोसे जा रहा है, अन्नपूर्णा देवी भोजन बांट रही है, अभी जगे रहो, देखो क्या क्या आइटम होगा उसके अंदर, पता नहीं, अन्नपूर्णा देवी बना रही है भैया, तो अन्नपूर्णा देवी का भंडारा मतलब कितना फेमस है, वो सब ऋषि मुनि देवता देव ऋषि सब लोग आ गए उसके अंदर, और वो भोजन के लिए बैठे, तो अगस्त ऋषि भी आ गए। अभी अगस्त ऋषि ऐसे ऋषि है कि उन्होंने एक बार समुद्र को पी लिया था, अभी उनको खिलाना मतलब संतुष्टि प्राप्त कराना, महापुराण भरेंगे बस हो गया, अभी ऐसा बोलना स्थिति को लाना मतलब कितनी मुश्किल बात है। तो पार्वती देवी को भी टेंशन आया कि बाप रे अगस्त्य मुनि आए तो क्या करेंगे, तो कृष्ण के पास गई और कहा कि अभी ये समस्या है क्योंकि असंतुष्ट हो गए तो हमारा व्रत पूरा नहीं होगा। तो कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करना, मैं हूं ना, उनको लास्ट में बिठाना और सेकंड लास्ट मैं बैठूंगा, और अगस्त्य मुनि को ऐसे आपको परोसोगे ना तो एक एक चम्मच चावल देंगे, दो दे सकते हैं आपको, एक आपको दो, ऐसा करते जाएंगे, एंड में कैसा जितना बचा हुआ है पूरा उसके प्लेट में, ऐसे पर्वत पूरे आपके लिए एक चम्मच, उनके लिए पूरा जो बचा हुआ थाली में पूरा ऐसे करके उनको परोसते थे, ऐसा उनका लास्ट में बैठने का पर्पज वो है। तो कृष्ण उसके बाद में बैठे, तो अभी पंगत जो है ना वो सब कुछ परोस के हो गया, और कृष्ण भगवान अचानक उठ गए पंगत से। अभी देखो पंगत में ना नियम होता है बहुत, आपको भी पता होना चाहिए, पंगत में बैठने सब बैठेंगे ना सारा आइटम परोसने के बाद में ही शुरू करना है। तो हमारे कल्चर कैसा है, बिगड़ा हुआ कल्चर, कि जो गिरा तुरंत मुंह में, जो गिरा तुरंत मुंह में, जो गिरा तुरंत मुंह में, ऐसा लगा कि दिया ही नहीं इनको कुछ पकड़ा दिया, पकड़ा मुंह में, टमाटर मुंह में, सब ऐसे पूरे खत्म। तो वो हमारा कल्चर नहीं, हमारा कल्चर सभी परोसने के बाद में और मंत्र बोलेंगे, राधे राधे बोलेंगे, जो भी अपना कल्चर साउथ इंडिया में गोविंदा गोविंदा बोलते हैं, यहाँ पर राधे राधे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, फिर खा लेते हैं। उसके बाद में जब बैठते हैं पंगत में, तो आपका भी खाना भी हो गया ना, तो भी आपको उठना नहीं है। तो सबसे सीनियर कौन है, वो उठेंगे ना, तो आप फिर आप उठ सकते हैं। और आप बीच में उठ गए ना, तो जो बाकी लोग बैठे हैं उनका अपमान हो जाता है, इट्स इंसल्ट टू अदर्स जो खा रहे हैं अभी। इसलिए अगर आपका भी नहीं हुआ है या हो गया है, क्या भोजन तो आपको उठना नहीं है, आपको बैठना है और भगवान का नाम का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक समय आएगा बोलेंगे जय जय श्री राधे, फिर आपको उठ जाना है, फिर हाथ धोने के लिए जाना है। उधर भी सीनियर लोगों को पहले हाथ धोने देना, ऐसा नहीं कि पहले आप खुद जाके वो अपना प्लेट डाल रहे, नहीं। हर एक में एक रिवाज होता है, हर एक सम्मान आदर की एक कल्चर है हमारा। तो कृष्ण भगवान तो उम्र में भी जूनियर है और अगस्त्य मुनि बहुत सीनियर है वैसे। तो कृष्ण भगवान उठ गए, तो अगस्त्य मुनि, अरे कैसे उठ रहे हो आप, मैंने अभी तक तो इंटरवल भी लिया नहीं बीच में। मतलब क्या होता है ना, अपना कैसे होता है, बहुत सारा भोजन करते हैं, बीच में एक इंटरवल लेते हैं और थोड़ा जल पी लेते हैं, तो जो गया है वो सेटल करके फिर नया स्पेस तैयार करके फिर आगे का तो वो कहते हैं कि अरे मैंने अभी तक तो जलपान भी नहीं किया है। तो वो जानते थे कि अगर ऐसे ही बैठेंगे तो पार्वती का व्रत पूर्ण नहीं हुआ। तो कहते आपका जलपान की व्यवस्था मैं करता हूँ, डोंट वरी। तो वो अगस्त्य मुनि वहां खड़े थे, जो टिल्ट किया ना तो पूरा पानी आया, तो उनने पिया उसको, ये भी इकट्ठा है उसके बीच में, समझ में आता है। वो पकड़ के रखा था ना ग्वाल वालों ने, बड़े वालों ने, तो उनको समझाने के लिए कि आप नहीं पकड़ रहे, मैं पकड़ रहा हूँ। इसलिए उनको जब टिल्ट किया ना उसको झुकाया, तो जो पानी ऐसे गिरा तो सारा अगस्त्य मुनि ने लंच के बीच का ब्रेक के बीच में पी लिया ऐसे भी कथा है उसकी। बहुत सारी चीजें हुई है इसके अंदर, बहुत सारे वार्तालाप हुए हैं प्रेम की, क्योंकि सभी लोग साथ में थे ना, वाल बाल भी, गवी भी, सब लोग साथ थे, सब देख रहे हैं, गाय भी ऐसे देख रही है। कहते हैं कि उन्होंने ना अपनी पलके भी नहीं छुपाई, पलके भी लिखी नहीं उन्होंने, खुले आंख से देख रहे हैं, सब पी रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इतना दर्शन सुंदर मिल रहा है, पेट ही नहीं भर रहा है। तो ये गिरिराज का लीला जो है ना, बहुत अद्भुत लीला है, बहुत अद्भुत। ओके, तो फिर पर्वत नीचे रखा, फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसे अवलोकन करने के लिए गए थे कि कितना डैमेज हुआ वगैरह सब कुछ हो गया। तो उतने में सब ग्वाल बाल आए, यहाँ से गोपियां आई, और ग्वाल बालों को याद आया, तो उन्होंने कहा था ना कि नजरों के बल से ये उठा रहे थे, तब ग्वाल बालों ने वापस उनको याद किया, आपने कहा था ना राधा रानी की नजरों के बल से गिरिराज को उठाया था, अभी दिखाओ। सब गिरिराज जी के तलेटी में थे, मतलब किनारे, तो कृष्ण भी आए, राधा रानी भी आई, सब लोग आए, और उन्होंने कहा राधा रानी आपको भी पर्वत को उठाना है। तो राधा रानी ने अपने से नजर जमाई गिरिराज के तलेटी पे, और फिर गोपियों ने कहा उठाए क्या, यहां उठाओ राधा रानी, उठा। राधा ने अपने नजरों को उठाया, पर्वत आकाश में चला गया, ऐसे यहां से ऐसे ऐसे उठाया, तो वो ऐसे आकाश में गया। तो उसने तो अपने हाइट पे उठाया ना उसको, है ना, उसने जितने हाइट के थे उतना हाथ ऊपर उठाया, जितनी उंगली ऊपर गई उधर ही उठाया, उतना ही उठ गया था। राधा रानी की नजरों से बहुत आकाश में गया वो, पर वैसे ही खड़ी है, और वो भी ऊपर खड़े हैं, तो सब लोग दंग रह गए, इतनी शक्ति है। कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे राधे कब कृपा करोगी, यानी हम लोग तो अनुवाद करते हैं कब कृपा करोगी, लेकिन उसका एक्चुअल अनुवाद क्या है, कब आपकी कृपा का चितवन हमारे ऊपर आएगी। कृपा कटाक्ष है ना, वो खाली कृपा नहीं है, कृपा का कटाक्ष का मतलब क्या है, तिरछी चितवन, जो साइड लॉन्ग ग्लांस कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो कब आपकी कृपा का कटाक्ष हम पर आएगा हे राधा रानी, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। किसने लिखा है ये,
शंकर भगवान ने लिखा है। शंकर भगवान ने पूरा स्तोत्र लिखा है, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, और लिखकर उसकी रचना करके लिखकर अपनी पत्नी को भेज दिया है। ये है पति और पत्नी का रिश्ता। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। और जैसे मुनिंद्र वृंद वंद वंदिते, यानी मुनिंद्र मुनि के जो इंद्र इच्छित जो इनके इष्ट हैं, मुनिंद्र वृंद वंदिते जिनकी पूजा करते हैं वो राधा रानी, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हरिणी, त्रिलोक में जितना शोक है उसको हरण करने वाले राधा रानी है। और प्रसन्न वक्त्र पंकजे, उनका जो चेहरा है बहुत प्रसन्न है और कमल की तरह है, वक्त्र यानी फेस, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी, सदैव इस निकुंज के भूमि पर रज में विलास करती है, शयन करती है। और ब्रजेंद्र सूनु संगते, यानी ब्रजेंद्र यानी नंद महाराज का सूनु यानी पुत्र के संगति में रहती है वो, कौन ब्रजेंद्र सूनु संगते, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते। ब्रजेंद्र मतलब दूसरा ब्रजेंद्र है वृषभानु महाराज, उनकी कन्या जो है ब्रजेंद्र भानु जो कन्या है उसकी, उनके संग में हमेशा ब्रजेंद्र सूनु यानी नंद महाराज के पुत्र रहते हैं। ऐसे राजा रानी को मैं बोल रहा हूँ, मैं पुकार रहा हूँ, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। तो सारे श्लोक है, हर श्लोक के एंड में उनका गौरव, हाँ, मखेश्वरी सुरेश्वरी क्रियेश्वरी रसेश्वरी ऐसे पूरा वर्णन आगे आता है। उसके हर श्लोक के एंड में कहते हैं वो, कदा करिष्यसि हमाम, हे राधे मैं आपका वर्णन जो कर रहा हूँ, कब आप कृपा करोगी, कब मेरा मैं भाग्य हो के आपका कृपा का किरण मेरे ऊपर गिरेगा। और एंड का श्लोक ऐसा है, मंडल प्रवेशनम, मंडल प्रवेशनम मतलब जब राजा का कृपा कटाक्ष प्राप्त हुआ तो फिर दोबारा कब मिलेगा ये पूछने की जरूरत नहीं है, वो मंडलम प्रवेशन यानी गोलोक धाम में प्रवेश कर चुका हो। आखिरी श्लोक में कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम नहीं है, मंडल प्रवेशनम है। तो इनकी कृपा प्राप्त होने से गोलोक मंडल में प्रवेश हो जाता है। राधा रानी के एक कटाक्ष के लिए कृष्ण भी लालायित रहते हैं, उनका उनका कृपा कटाक्ष कृष्ण की हृदय संजीवनी है, कृष्ण के जीवन को चलाने वाला अमृत है वो। कृष्ण को जीवंत रहना है तो भी वो राधा रानी का कृपा कटाक्ष जरूरत है उनको, ये रहस्य की बात है। तो ऐसे राधा रानी ने चमत्कार दिखाया, ऋतुराज को नीचे रखा। तो ये सब बहुत भाग्य की बातें हैं कि ये हम लोग सुनते हैं और सुन रहे हैं और हमने सुना भी है। और ये भाग्य को ना कभी ऐसे, अभी आपका जाने का समय हो गया बम्बई है ना, अभी कुछ कथा आपने सुनी, दर्शन किया भगवान के दिव्य धाम का, तो उसको हृदय में लेके जाइए आप। अभी ट्रेन में जाते ही बम्बई का विचार मत कीजिए, हमारा कैसा होता ना कि जाने के पहले ही बम्बई का ऑलरेडी विचार चालू हो जाता है, ऑलरेडी देर ऑलरेडी कल क्या अपॉइंटमेंट है, कल किसको मिलना है, कल कहाँ जाना है, कल कौन आने वाला है, कौन सी कोर्ट में जाकर कुछ हाजिरी लगानी है, ऑलरेडी योर माइंड इज देयर। जैसे आने के पहले कुछ दिन पहले माइंड यहाँ पर आ जाता है कि भाई जाना है, उधर भी पहुंचना है, कौन सा रूम होगा, कहाँ रहने वाले। लेकिन यू कैन थिंक लाइक नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, लेकिन हृदय में इस धाम को बसा कर जाओ। और जब भी दिल उदास होगा तो उसकी याद करो, यही तो रहस्य है। कोई भी दुख इतना शक्तिशाली नहीं है कि आप कृष्ण की लीलाओं का याद करके भी वो नष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप दिल से कृष्ण लीला को याद करोगे ना तो दुख वहां पर ही रहेंगे, फिर आप तो छुएंगे नहीं, वो स्पर्श नहीं करेंगे आपको। कृष्ण नाम कृष्ण लीला कृष्ण रूप दर्शन ये करने से सब दुख हरण हो जाता है, ये वास्तविक हकीकत है। ये श्रद्धा होनी चाहिए, और अगर आप उसका प्रयोग करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन में जितने संघर्ष होंगे कष्ट होंगे सब श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करके नष्ट हो जाते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी जीवितम कलम शाप हम, गोपियां कह रही है कि हम हमारा भी जो आपका विरह का दुख है वो भी आपकी कथाओं को याद करके ही शमन हो रहा है उसका। वो रो रही थी छाती पीट कर, उद्धव जी गए तो जब कृष्ण के बारे में बताना शुरू किया ना तो खुश हो गई वो। उद्धव जी नोट किया, अरे दे आर वेरी बहुत दुखी, दुख में विरह में है वो, बहुत दुख विरह की यातना सहन कर रहे हैं। लेकिन जब वो कृष्ण की याद में कुछ कहानी बताते हैं तो खुश हो जाते हैं। जैसे उसने कहा कि बेटर आइस डोंट टॉक, लेट देम टॉक, क्योंकि जितनी उन्होंने नाटिकाएं करके दिखाई, बहुत नाटिका भी करके दिखाई उद्धव जी को, उन लीलाओं को दिखाया करके, कोई कृष्ण बना कोई राधा रानी बनी कोई उन्होंने ड्रामा करके दिखाया, तो वो बड़ी खुश थी उस समय, क्योंकि कृष्ण लीला को कहते हुए और नाट्य मंचन करते हुए वो कृष्ण के अस्तित्व का ही अनुभव कर रही थी, इसलिए विरह खत्म था उस समय। तो ये रहस्य गोपियों ने भी जाना है कि तव कथामृतम तप्त जीवन, यहाँ तक कि जब कृष्ण ग्वाल वो रास तोड़ के गए थे ना तो तभी भी वो विरह में थी, तभी भी वर्णन सुखदेव जी ने किया है कि उन्होंने किसी ने गीत गाया कृष्ण का, किसी ने लीलाओं का गायन किया, किसी ने लीलाओं का वर्णन किया और किसी ने मंचन किया उनका, मतलब ड्रामा प्रेजेंटेशन किया, उसी समय दुख में है वो, लेकिन कृष्ण के विषय में उन्होंने लीलाओं को नाट्य प्रस्तुत किया एक दूसरे के सामने और उस तरह से दुखों का शमन किया अपने दुखों का। तो गोपियों का प्रत्यक्ष अनुभव ये, और रानियों का अनुभव बताया ना मैं आपको, उद्धव कुंड में रोते हुए विलखती हुई रानी आई, लेकिन भागवत का प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द सुनते ही दुख हरण हो गया उनका, क्योंकि कृष्णो स्वधाम उपगते, जब कृष्ण इस धाम को छोड़ के गए उसी क्षण इस पृथ्वी के क्षितिज के ऊपर श्रीमद भागवत का सितारा का उदय हो गया, वो स्वयं कृष्ण भागवत के रूप में प्रकट हो गए। और वो भागवत का जब ध्वनि हम सुनते हैं तो श्री कृष्ण का अनुभव करते हैं, इससे दुखों का हरण होता है। और वो भागवत क्या है, श्री कृष्ण भक्त और श्री कृष्ण का चरित्र है उसके अंदर, और क्या है भागवतम, व्हाट इज भागवत अल्टीमेटली, भक्त चरित्र और कृष्ण चरित्र, उसका ही खजाना है पूरा वो। इसलिए जब बंबई जाएंगे तो चिंतन मनन करते जाना, और जब भी उदास समय होगा या आनंदी समय होगा, जब भी कुछ होगा कृष्ण की याद बनाए रखना, लीलाओं का स्मरण करना, याद नहीं आ रहा तो रिकॉर्डिंग लेके जाना और सुनना। तो क्या होता है ना उसमें, समझो आपने वो सुना तो आप किस जगह पर बैठ के सुना था उस जगह पर पहुंच जाएंगे आप, आपको पता चलेगा कि ये ना वो गोवर्धन के आश्रम में सुना था, ये ना हमने वो कुसुम सरोवर पे सुना था वो पोहा खाने के बाद, ऐसा आपको याद आएगा। दिस इज द लिंक, कनेक्शन, मेमोरी लिंक, ऐसा है। सो अभी आप मानसिक गंगा जाके आए ना, तो संक्षिप्त में ही बोलना पड़ेगा। तो यमुना जी जब ही भगवान ने अवतार लिया तो सबसे पहले तो यमुना जी में गिर गए, इज इट नॉट ट्रू, मैया का दूध पिया, टोकरी में डाला, उनको बाहर आए और देखा यमुना जी बढ़ रही है, तो कृष्ण भगवान, एक वर्णन आता है कि पैर बाहर निकाले और चरणों का स्पर्श दिया और रास्ता दिया, एक वर्णन आता है कि वो खोद कूद गए उसके अंदर, पूरा अभिषेक करवाया अपना और तुरंत जन्म लेते ही यमुना जी को ना अंग संग का भाग्य दिया उन्होंने, पर्सनल एसोसिएशन फिजिकल। तो चरण यमुना जी उधर ही चरणामृत बन गए भगवान की, पवित्र जल था पवित्र जल पहले से ही, लेकिन वैसे पवित्र तो उगम से ही पवित्र है गोलोक धाम से ही, लेकिन यहाँ आते ही पहले अंग संग दिया और उसके बाद इतनी लीलाएं की यमुना किनारे। तो गंगा जी यमुना जी की बड़ी बहन है, क्योंकि वो उनका उगम गोलोक में उनके पहले हुआ है, बाद में यमुना जी का जन्म हुआ है गोलोक में, विष्णु पद कामिनी। तुमने कहा अरे यमुना देवी मेरी छोटी बहन, तुम्हें कितना संग प्राप्त हो रहा है, मेरी भी ऐसी इच्छा है कि आप मुझे भी ब्रज में कुछ सारा स्थान मिले, मुझे भी कुछ संग प्राप्त हो, कुछ कृपा मेरे पे भी हो। तो यमुना जी ने कृष्ण के पास ये अर्जी दिया हुआ है कि मेरी बहन भी चाहती है कि कुछ मेरा भी भाग्य उदय हो। तो भगवान ने गंगा जी को ब्रजवास दिलाने के लिए एक लीला रचाई, वो ये है कि उनके बाबा नंद बाबा और बड़े बड़े ग्वाल बाल और सब बड़ी बड़ी गोपियां कथा सुनने के लिए बैठी थी गंगा जी का महात्म्य, और इसी गोवर्धन इलाके में सुन रहे थे वो कथा। जब कथा सुन रहे हैं सब लोग सुनना कथा गोवर्धन गंगा जी के महिमा के, यहाँ अभी प्रसाद आने वाला है उसके पहले गंगा जी का महिमा होने दो। तो कथाकार क्या बोल रहे हैं, ये सोचना कि आप सब बड़ी गोपियां हैं और आप सब बड़े गोप हैं और आपको किसी को नींद नहीं आ रही है, ये भी सोचना। तो उसके बाद तो कथाकार क्या बोल रहे हैं कि एक बार गरुड़ जी ने अपनी भक्ष्य सांप को पकड़ा और वो खाने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे कहीं अच्छी तरह बैठ के खाऊं उसको। तो सांप को अपने दो हाथों में बोलो या पंजों में बोलो या पैर में बोलो पकड़ के वो जा रहे थे। और सांप कैसा डोरी की तरह होता ना, वो लटकता ऐसे, पकड़ा यहाँ होगा तो लटकेगा नीचे। तो वो ऐसे जा रहे थे तो बीच में गंगा जी आ गई तो थोड़ा झुक गए ऐसे ऊपर, पंछी देखा ऐसे 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 उड़ता है ना ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जैसे झुक गया ना तो वो सांप की पूंछ का स्पर्श गंगा जी के जल को हुआ और जैसे ही जल को स्पर्श हुआ वो जो सांप योनि में जीव था उसका मुक्ति हो गई तुरंत और उसको वैकुंठ का शरीर प्राप्त हो गया तुरंत ही हाथ के हाथ में। तो ऐसा पकड़ा था तो ऐसे हो गया हाथ उसका, समझ में आपको? देखो ऐसे सांप को पकड़ा है समझो आपने, तो ये ऐसा शरीर प्राप्त हो गया ना उसको चार भुजा वाला, तो वो हाथ उसका फैल गया ब्रह्म गरुड़ जी का हाथ। बोल रहे क्या हो गया, हमारे हाथ में सांप को रखा था उसका क्या हो गया? देखा तो क्या चतुर्भुज पीताम्बर मुकुट वगैरह साथ शंख चक्र पद्म गदा के साथ सांप था ही नहीं उधर, विष्णु दूत बन गया वो गंगा जी का स्पर्श होते ही। तो भी खाने का कैसा विचार नहीं कर सकते, उसको पीछे बिठाया कंधे पर और वैकुंठ पहुंचा के आए वो। विष्णु दूत को घर पहुंचाना जरूरी है ना, फिर उसका गंतव्य स्थान विष्णु विष्णु लोक है, तो वैकुंठ को जाके पहुंचा के आए। अब ये कथा नंद महाराज और सारे ग्वाल बाल सुन रहे तो आप में से कोई खड़ा नहीं हो गया? महाराज तुरंत खड़े हो गए, बोले अब भी गंगा जी जाना है आप मेरे को उठा के कोई। नंद बाबा इतने आतुर इतने मतलब कथा इतने समरस होकर सुन रहे थे कि तुरंत खड़े हो गए कथा में, अब भी गंगा जी में स्नान करना है। कृष्ण बोले क्या पापा, बार बार त्रिवेणी जाना है, बद्री जाना है, केदार जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, अरे इधर ही रहो बाबा। नहीं नहीं आपने सुना नहीं क्या बोल रहे महाराज जी, इतना महिमा साफ साफ योनी इतनी निचली योनी पाप योनि उसको स्पर्श होते ही विष्णु दूत का स्वरूप प्राप्त हो गया, हमें अब भी जाना है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कहीं नहीं जाना है, आप रुको मेरे साथ चलो। तब ये बालक इतना क्या भाषण है उसका, सम्मोहिनी भाषण है, जो कुछ बोलते हैं ना ऐसा मन में मोहिनी चलती है पूरी। अभी बोला ना उन्होंने बंद करो वो इंद्र की पूजा, गोवर्धन की करो, तो टाल नहीं सके उसको। हाँ कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, बंद करो इनकी पूजा और इनकी पूजा करो। बोल रहे नहीं 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 इनकी पूजा अलग से करेंगे, नहीं 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 इनकी पूजा का साहित्य कैंसिल करके इसको ही इधर यूज करो। मान गए वो कृष्ण की बात नहीं मान टाल सकते हैं। तो गए सब लोग पीछे उसके, कहाँ ले जा रहा है पता नहीं है। चलो तो गोवर्धन के बीच में लेके आए, जहां पर अभी आप गए ना वो गोवर्धन का मध्य है, बीच में लेके आए खड़े हो गए सब लोग। अभी क्या करेगा? तो ना अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम, सबके सामने उनके नन्हे कन्हैया के हृदय से गंगा जी प्रकट हो गई, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होके ऐसे सामने खड़ी हो गई, मगरमच्छ में बैठी हुई है, चार भुजाएं हैं और हाथ जोड़कर पहला आश्चर्य क्या, अरे इसके हृदय में गंगा प्रकट हो गई, सुन रहे सब लोग हरे कृष्णा प्रकट हो गई। तो दूसरा आश्चर्य क्या है, हाथ जोड़कर इतने नन्हे से बालक को पूछ रही हे भगवान क्या आदेश है हमारे लिए। दूसरा आश्चर्य अरे बाप रे गंगा देवी हमारे कन्हैया को, कन्हैया कौन है हमारा पता नहीं। और तीसरा आश्चर्य गंगा जी को आदेश दे रहे हैं तुम्हारा जल यहाँ प्रकट करो हमारे बाबा स्नान करेंगे। तीसरा आश्चर्य, चौथा आश्चर्य गंगा सुन रही है और जल प्रकट किया उसने, से एवरीथिंग इज मीनिंग ना। अभी तुमने बोला होगा वर्षा होने दो, अरे वर्षा हो ही नहीं क्या फायदा है, सब लोग बोल सकते हैं वर्षा होने दो लेकिन बोलने से क्या होता है, लेकिन ये बोला और वो हुआ भी। गंगा जी ने आपकी आख्या सिर सावंध्य ऐसे कह के पूरा जल प्रकट किया, सागर जैसा कुंड बना दिया पूरा गंगा जी का अपना जल। ने गंगा जी को एक अपना गोवर्धन के बीच में स्थान दिया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, मानसी गंगा, जो कृष्ण के मन से हृदय से प्रकट हुई और विराजमान हो गई यहाँ पर परमानेंटली। फिर उसके बाद में भगवान ने उसमें नौका विहार किया। तो बड़ी लंबी लंबी कहानियां हैं, अभी कभी दोबारा आप समय निकाल के आना, बहुत समय रहेगा और अच्छी जागृति रहेगी तो कथा ही कथा। तो वो सुखदेव जी कैसे थे ना, सुखदेव जी कथा कर रहे थे, परीक्षित महाराज कथा सुन रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने कभी भी झपकी नहीं लिया बीच में, कभी भी नहीं लिया, भूख लग रही ऐसा नहीं बोला, प्यास लग रही ऐसा नहीं बोला, लघु शंका वेग आया ऐसा नहीं बोला, उनको तो शरीर का होश ही नहीं था। उल्टा दो दिन हो गए, चार दिन हो गए, पांच दिन हो गए, छठवें दिन पे कृष्ण लीला का वर्णन शुरू किया, तो वो कृष्ण भी लगे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे ऐसे क्यों, अरे वैसे क्यों, ऐसे मतलब सुन रहे हैं ना, ऐसे उसको चिंतन भी कर रहे हैं उसके ऊपर, केवल पैसिवली सुन रहे हैं, सुनकर अंदर प्रोसेसिंग भी चल रहा है, उस पर प्रश्न भी निकल रहे हैं। तो सुखदेव जी उनको ना अभिनंदन करते हैं, कंग्रेचुलेशन कि आप इतने दिन होने के बाद भी भूखे पासे रहकर भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे को कितना उत्साह प्राप्त हो रहा है, क्योंकि खुद भी उन्होंने पानी नहीं पिया था, भोजन नहीं किया था, नो ब्रेक फॉर हिम ऑल्सो, लेकिन श्रोता उनको उत्साह दे रहे थे, इसलिए वो भी उनका भी उत्साह बढ़ रहा है। अगर वो सुनने देख रहे थे कि परीक्षित महाराज सो रहे हैं बेचारे थक गए, वो नेचुरल है, इतना दिन हो गया रोज पकवान खाने वाले राजा अभी आज पानी भी नहीं पी रहे, तो बेचारे नेचुरल है कि वो थकेंगे, तो उनको गुस्सा आता नहीं था, लेकिन ठीक है बाबा अभी थक गया बेचारा श्रोता, अभी क्या बताऊं मैं इसको। लेकिन सुखदेव जी का उत्साह कण कण और क्षण क्षण में परीक्षित महाराज ने बढ़ाया। भागवत पढ़िए आप, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे श्रोता थे सुखदेव जी परीक्षित महाराज। वक्ता का उत्साह बनाए रखा उन्होंने, और बीच में ना मैं आपको बता रहा कल भूल गया, अघासुर का वध हुआ ना, अघासुर का वध हुआ, तो फिर अघासुर के वध की बाद एक साल के बाद में ग्वाल बालों ने घर में बताई, तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि ऐसे कैसे एक साल के बाद, रोज तो रोज बताते हैं, एवरीडे दे गिव रिपोर्ट। तो उसका उत्तर जब वो सोचने लगे तो सुखदेव जी को ग्लानि आ गई, वो बेहोश हो गए भाव विभोर होकर, क्योंकि उसका उत्तर जो है वो पूर्ण ब्रह्म समोहन लीला है ना, पूरी पूरी ब्रह्म समोहन जो 14वें अध्याय की लीला है वो उसका उत्तर के रूप में उन्होंने बताई है, लेकिन बीच में वो बेहोश हो गए। और परीक्षित महाराज को पता था कि ये बहुत रसिक भक्त हैं, कि कभी भी कृष्ण लीला के बीच में भावावेश में बेहोश हो सकते हैं, तो हमारा कथा का तो विराम हो जाएगा उस समय, तो इनको जगह रखने के लिए अगर भाव विभोर हो जाते हैं तो उन्होंने ना वाद्य मंडली तैयार रखी थी, मतलब ऐसे रेडी थे वो वाद्य वाले, वो भी सोए नहीं कभी, तो राजा कब आज्ञा देगा बजाओ, तो बजाना पड़ेगा ना, अगर बोले बजाओ तो बजाने वाला सो गया तो वो बजाएगा कौन तो वो मंडली को जैसे ही वैसे झुक गए ना, ऐसे भाव विभोरता होकर बेहोश हो गए ना, बजाओ धड़ाधड़ कीर्तन जोर से किया, तुरंत होश में आ गए, और फिर उन्होंने ब्रह्म सम्मोहन लीला बताई पूरी। तो ये उनको पता था, उन्होंने राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनको मानो श्राण मासेत क्या शब्द उसका यूज किया पता नहीं आ रहा है, बेहोशी का शब्द यूज किया है, कि 6 महीने तक उनको राधा रानी का नाम लेने के बाद में ग्लानी आती थी, बेहोश हो जाते थे वो 6 महीने तक, उनकी जो भाव अवस्था थी ना वो 6 महीने टिकती थी। अगर समझो बीच में राधा रानी का नाम लेते थे वो तो 6 महीना गया ना, अभी 7 दिन में 6 महीने की तरह कम्प्लीट करेगी। इसलिए सुखदेव जी ने अपने भाव को रोक कर कभी भी राधा रानी का नाम का उच्चारण नहीं किया, आराधिता न्यूनम ऐसे इनडायरेक्टली उनका नाम बताया कि दैट गोपी हु वाज वेरी स्पेशल, ऐसा ही उल्लेख किया है। प्रत्यक्ष उल्लेख तो बाद में भगवत संहिता में या बाकी पुराणों में आया हुआ है। तो देखिए श्रोता कितना सतर्क है, ही नोज कि माय स्पीकर कैन गो अनकॉन्शियस, तो ही कैन अफोर्ड टू डू दैट, उसने भी इसकी व्यवस्था करके रखी थी। इसलिए बीच में हम लोग फवारे छोड़ते हैं हरे कृष्णा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धन्य है वो वक्ता, धन्य है वो श्रोता, दोनों एक से एक बढ़कर थे। इसलिए दोनों श्रेष्ठ श्रोता और वक्ता एकत्र होने के बाद ही श्रीमद् भागवत जैसा सुंदर महापुराण प्रकट हो गया है। तो कोई भी महान चीज अगर वक्तृत्व में प्रकट होनी है तो वक्ता और श्रोता का सुंदर संबंध उसमें होना चाहिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट श्रोता और बेस्ट वक्ता अगर हुआ ना तो ही अमृत धारा बहती है, अदरवाइज एक आदमी ढीला हो गया तो दूसरा आदमी हरी बोल। तो अगर संत समागम जब होता है ना तो उसमें श्रोता वक्ता दोनों सतर्क रहेंगे तो अमृत धारा बहती है। तो हम लोग इसे भागवत पढ़ते हैं बार बार, क्योंकि ऐसा श्रोता उसका चरित्र भी उसके अंदर है, सुखदेव का भी चरित्र है उसके अंदर। तो हमारा भाग्य है कि हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत का परिचय हमारा हुआ है, इसको आप पढ़िए। हाँ कथा सुनने में मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती, कथा आत्मसिद्धि के लिए होती है, कथा के बाद में उसका सार ग्रहण करने के लिए होती है, कथा को सार ग्रहण करके जीवन में उतारने के लिए होती है। तो श्रीमद् भागवत का, सभी पुराणों का, 108 उपनिषदों का, सारे वेदों का सार क्या है बताइए। नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते इति षोडशकम् नाम्नाम् कलि सर्व कलमश नाशनम नतः परतरूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। और इति षोडशे मिले कौन से षोडशे, कौन से सोलह अक्षर कलि संतान उपनिषद में दिया है उसका श्लोक बोल रहा हूं आपको। इति षोडशकम नाम नाम, इन सोलह नाम के अक्षरों अक्षरों का उच्चारण करके, इन मतलब किन के, उसके पहले बोला है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कलि सर्व कलमश नाशनम, कलि के सारे दोषों का नाश इन सोलह अक्षरों से हो सकता है। और वो क्या कह रहे हैं, मैं ये जो कह रहा हूं ना, मैं नहीं कह रहा हूं नतः परतरोपाय, और कोई उपाय नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को छान मारने के पश्चात ये सार निकला हुआ है उसका कि भगवान का नाम लेना चाहिए, कि सारे वेदों को ऐसा पकड़ के निचोड़ेंगे ना ऐसा तो भगवान का नाम गिरेगा, वो इसका सार है। और वो अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो कथा केवल मन के स्तर पर मनोरंजन करते हुए ही चली जाएगी और आप वहीं रह जाएंगे जहां पर थे, हम है वही हम थे जहां, है ना। तो वैसे हमको नहीं रहना है, हमको चाहिए परिवर्तन, कथा सुनने के पश्चात हृदय परिवर्तन होना चाहिए, जीवन में नाम का प्रवेश होना चाहिए, जीवन में नाम की जप की विधि शुरू होनी चाहिए, जीवन का परिवर्तन होना चाहिए, तब कृष्ण मिलेंगे। कथा में वो शक्ति है, अगर कथा का सार आप ग्रहण करेंगे, भगवान नाम का जप शुरू करेंगे, चाहे आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर नहीं हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी कुछ हो, किसी भी अवस्था में हो, जो युवा अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में हो, भगवान का नाम मनुष्य जाति के लिए, जानवरों के लिए नहीं बनाया है, मनुष्य जाति के लिए भगवान का नाम दिया है। तो सारे हमारे बड़प्पन को छोटेपन को भूल कर हमको भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। हमारी उम्मीद है कि हमारा जो भी समय हमने एक साथ में बिताया उसके परिणाम के स्वरूप आप सब लोग जो जप कर रहे हैं वो अधिक प्रेम से गहराई से करेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू करेंगे। ये हमारी प्रार्थना भी है आपके लिए और हमारी निवेदन भी है और हमारी आशा भी है। तुम आशा विश्वास हमारे, यही विश्वास कि आप जपेंगे, हरि का नाम लेंगे और जीवन को धन्य करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।